मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज 13 फरवरी 2017 है और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और तिगुनी गर्मजोशी के साथ स्वागत करता हूं, क्योंकि इन दो दिनों के गैप में जब मैं आप लोगों का स्वागत करने से वंचित रहा हूं, उसकी ऊर्जा का भी इस्तेमाल आज तीन गुने रूप में आपके साथ कर रहा हूं, आपके लिए कर रहा हूं। और दोस्तों, आप सबके साथ ही मैं स्वागत करता हूं अपने उन तीन नौजवान साथियों का भी, जिन्होंने एकेडमी की अक्टूबर नवंबर में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन नौजवान दोस्तों के नाम हैं सूरज पटेल, जो गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश से हैं, कुलदीप कुमार, आप बांदा उत्तर प्रदेश से हैं, और पूजा कुमारी विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश से हैं। तो सूरज, कुलदीप और पूजा, आप तीनों मित्रों का मैं अपनी एकेडमी की पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले कि हम अपने न्यूज एनालिसिस पर आएं, मुझे एक दो सूचनाएं उन स्टूडेंट्स को देनी है जो बस अब उनका अंतिम सप्ताह ही है, जब वो अपना सब सामान लेकर, सब नहीं, जो भी उनकी जरूरत का सामान है, और एकेडमी के लिए प्रस्थान कर जाएंगे अपने घर से। मित्रों, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण सूचना यह है कि अभी शनिवार को, यानी कि दो दिन पहले, भोपाल में थोड़ी सी सुबह बारिश हुई और फिर शाम को भी बारिश हुई और ओले भी गिरे, और भोपाल के आसपास के एरिया में बारिश की मात्रा भोपाल की तुलना में दोगुनी तीन गुनी रही और वहां भी ओले गिरे। तो बट नेचुरल है कि इससे भोपाल में थोड़ी सी ठंडक बढ़ गई है। वैसे भी आपको जो सूचना दी गई है, उस सूचना में ये मेंशन किया गया है कि इस दौरान जो आपके क्लासेस का जो ड्यूरेशन होगा, मौसम थोड़ा गुलाबी रहेगा, यानी कि हल्की हल्की ठंड हो सकती है। यहां मैं आप लोगों से थोड़ा सा एक अर्ज करना चाहूंगा, क्योंकि अभी मौसम कुछ इसी तरह का चल रहा है, मौसम विभाग भी कुछ इस तरह की बातें कह रहा है कि कुछ दिनों के बाद बीच बीच में इस तरह की चीजें हो सकती हैं कि बादल छा जाएं, थोड़ी हल्की बारिश हो जाए या आसपास के क्षेत्र में बारिश हो जाए, तो बट नेचुरल है कि उसका प्रभाव भी भोपाल पर पड़ेगा और थोड़ी सी ठंड बढ़ जाएगी। जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट है यहां दोस्तों, जो सूचना है, जो अर्ज है, वो सलाह है, वो ये कि आप सब अपने साथ एक एक गर्म कपड़ा जरूर रख लें, है ना, स्वेटर, फुल स्वेटर, हाफ स्वेटर, ज्यादा अच्छा होगा फुल स्वेटर रखें, जो भी आपको ठीक लगता हो, क्योंकि सबको ठंड लगने की अपनी अपनी अलग अलग प्रवृत्ति भी होती है। ऐसा इसलिए कि बाई दी वे अगर बारिश हो गई तो नो डाउट कि रात में तो आपको जहां आप रुकेंगे वहां ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन वहां से जब आप सुबह क्लास के लिए चलेंगे, जहां आपको जाकर क्लास के स्थल पर जो आपको ब्रेकफास्ट करना है, तो वहां अगर आपको ठंड लगती रहेगी तो मुझे भय इस बात का है कि कहीं वो ठंड आपको पकड़ न ले, क्योंकि जब इस तरह के टेम्परेचर्स में तेजी से बदलाव होते हैं तो सर्दी, खांसी, गला खराब हो जाना, फीवर आ जाना, ये बहुत आम बातें होती हैं। उस सेफ्टी के लिए आपको चाहिए कि आप जरूर अपने साथ एक एक गर्म कपड़ा रखें। जरूरत नहीं पड़ेगी तो कोई बात नहीं, आप वापस ले जाएंगे, जरूरत पड़ेगी तो कम से कम वो आपको प्रोटेक्शन देगा, क्योंकि मित्रों, याद रखिए कि आप एक बड़े लक्ष्य को लेकर आ रहे हैं, और सच पूछे तो एकेडमी का भी ये बहुत बड़ा लक्ष्य है कि आपके लोगों के जीवन में कुछ सकारात्मक चीजें डाले, कुछ सकारात्मक योगदान उसका हो, तो हम दोनों के सहयोग से ही ये संभव होगा। और अगर इन छोटी छोटी लापरवाहियों की वजह से हम या आप उस अवसर को खो देंगे या कमतर बना देंगे, तो मैं समझता हूं कि शायद हम न तो अपने प्रति न्याय कर पाएंगे और न उस अवसर के प्रति। तो मित्रों, ये एक छोटी सी सूचना थी। दोस्तों, अब मैं आता हूं न्यूज एनालिसिस पर। मित्रों, कल की न्यूज आपने सुनी होगी, और सच पूछे तो उस तरीके से न्यूज में कोई बहुत महत्वपूर्ण बातें सिविल सर्विस के लिहाज से मुझे मिली नहीं, और वैसे भी आपने तो आप अनुभव कर ही लिया होगा कि खासकर जब आप संडे की न्यूज सुनते हैं और उसी संडे की न्यूज की हम मंडे को एक तरह से एनालिसिस करते हैं, तो चूंकि सब कुछ बंद होता है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो इस तरह की घटनाएं नहीं होती हैं कि बहुत बड़ी बातें हमें सामान्य तौर पर एनालिसिस के लिए मिल सके। न्यूज में जो दो तीन चीजें थी आपके ध्यान के लिए मैं बस बताना चाहूंगा कि एक तो चुनाव की खबरें हैं, आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जो मतदान होना है उसके लिए चुनाव प्रचार चल रहे हैं, तो वो तो कोई खास बात नहीं है। लेकिन एक जो दूसरी जो महत्वपूर्ण खबर है, खासकर गवर्नमेंट फॉर्मेशन को लेकर के दोस्तों, वो AIDMK जो तमिलनाडु में जो एक राजनीतिक आपाधापी चल रही है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस पूरे के पूरे घटनाक्रम को आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, ध्यान से देखें ही नहीं बल्कि समझने की कोशिश भी करें कि क्या क्या, जो जैसे शतरंज की चाल में अलग अलग खानों पर अलग अलग पावर वाली गोटियां बैठी रहती हैं ना, सब गोटियों के अलग अलग शक्तियां होती हैं, क्षमताएं होती हैं, लगभग उसी तरह की स्थिति खासकर राजनीति में होती है, और तब तो बहुत ज्यादा होती है जब एक ही पार्टी के दो समूह एक दूसरे के आमने सामने खड़े हों। आप देख रहे हैं कि एक तरफ शशिकला जी मुख्यमंत्री की दावेदारी कर रही हैं, दूसरी तरफ पनीर सेल्वम जी जो पहले मुख्यमंत्री थे और अभी कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं, वो भी दावेदारी कर रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम को आप वाच करते जाइए। परीक्षा की दृष्टि से आपको देखना है कि हमारे गवर्नर क्या निर्णय लेते हैं, गवर्नर क्या निर्णय, क्योंकि ऐसे समय पर ही गवर्नर की सबसे बड़ी और चुनौतीपूर्ण भूमिका हो जाती है। दोस्तों आप देख रहे हैं कि गवर्नर के सामने भी उतना आसान रास्ता नहीं है। अदरवाइज तो देखिए बहुत आसान होता है कि सबसे बड़े दल को बुला लीजिए, आप अगर किसी के पास बहुमत नहीं भी है और वो जो सबसे बड़े दल का जो नेता है आप उनको सरकार बनाने के लिए बुला लीजिए और उनको कह दीजिए कि भाई मतलब अगर वो चाहते हैं तो, वो कहते हैं कि हम फॉर्म करेंगे तो आप बुला लीजिए। उस हिसाब से देखें तो अभी शशिकला जी का दावा ज्यादा बनता है, क्योंकि उनके साथ ज्यादा एमएलए हैं। लेकिन आप देखें कि इसमें फिर क्या दुनिया भर के चक्कर पड़ गए हैं, यही तो शतरंज और यही राजनीति है कि एक खबर आ रही है कि एमएलए को बंधक बना लिया गया है, यानी कि उनकी स्वतंत्रता बाधित हो गई, तो फिर ये डेमोक्रेसी कैसी। दूसरी तरफ आप ये देख रहे हैं कि शशिकला जी पर संपत्ति ज्यादा रखने के आरोप में एक मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, वहां से भी एक डिसीजन आना है। अब गवर्नर इस पशुपेश में भी हो सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन मान लीजिए कि अगर अगेंस्ट आ गया शशिकला जी के, तब फिर वो चीफ मिनिस्टरशिप से, फिर जो भी घटनाक्रम होगी, जो भी वो डिसीजन लेंगी, वो एक अलग वो संकट हो रहा है। दूसरा ये पनीर सेल्वम जी अलग दावा कर रहे हैं कि मैं अपना जो त्यागपत्र है वो वापस लेने को तैयार हूं और मुझे मौका दिया जाए मैं प्रूफ कर दूंगा अपनी मेजॉरिटी। आप देख रहे हैं ना, इतना आसान तो नहीं। अब संविधान में तो ये सारी घटनाओं का जिक्र नहीं किया गया था कि ऐसा ऐसा होगा तो फिर आप ऐसा ऐसा कीजिएगा, नहीं है। और फिर आपने न्यूज में ये भी सुना कि जो डीएमके है, जो डीएमके पार्टी, उसकी बैठक हो रही है, उसका भी रोल इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि देखिए अगर इसी पार्टी में विभाजन हो गया, हो ही गया है, एक ग्रुप पनीर सेल्वम जी के साथ है तो दूसरा शशिकला जी के साथ है और लगभग लगभग आसपास ही है मेजॉरिटी के, तो वहां से अगर 10-15 भी टूट करके मान लीजिए चलिए पनीर सेल्वम जी के पास रहे तो उनकी तो मेजॉरिटी नहीं रहेगी, वो तो बहुमत खो देंगे, तो फिर क्या, कैसे सरकार बनेगी। तो हो सकता है कि AIDMK जो पनीर सेल्वम जी हैं उसको DMK सपोर्ट कर दे कि ठीक है आप सरकार बनाइए हम आपको सपोर्ट करते हैं, तो वहां एक गठबंधन सरकार बन जाए। तो मित्रों ये सारे घटनाक्रम को आप बहुत अच्छे से देखते रहिए, वाच करते रहिए और इसके ऊपर जो एडिटोरियल कमेंट आते हैं आप उन एडिटोरियल कमेंट्स को भी पढ़ते रहिए और फिर कॉन्स्टिट्यूशन को समझने की कोशिश कीजिए, फिर आप देखिए कि सरकार कैसे बनते हैं, राज्यपाल के क्या अधिकार हैं, सुप्रीम कोर्ट के क्या डिसीजंस हैं, तब सही मायने में आप पॉलिटी को समझ पाएंगे और आपको कॉन्स्टिट्यूशन से ज्यादा पॉलिटी को ही समझना है ना। कॉन्स्टिट्यूशन में तो सिंपल सी एक लाइन लिख दी गई है कि बहुमत दल के नेता को जो गवर्नर है सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेंगे, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, लेकिन पॉलिटी आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। अभी जो मैंने पूरा विस्तार से आपको बताया वो पॉलिटी ही तो है। तो दोस्तों ये केवल इसी के बारे में मैं नहीं कह रहा हूं, जब भी राजनीति के क्षेत्र में ऐसा कुछ होता है तो आप उसके व्यावहारिक पक्ष को देखने की कोशिश कीजिए और वहां से चीजों को पढ़िए और समझिए। मित्रों जो दूसरी एक अच्छी खबर है वो ये है कि भारत ने जो भारत का जो दृष्टि बाधित जो टीम है क्रिकेट की, उसने T20 मैच का फिर से वो विश्व चैंपियन बन गया है। ये भारत के लिए एक बहुत उपलब्धि की बात है, वो सबके सब बधाई के पात्र हैं जो इस टीम के सदस्य हैं और जो इस पूरे ग्रुप में हैं। ये शो करता है कि कैसे उनमें भी कितनी बड़ी जिजीविषा है, उनकी अपनी क्षमताएं हैं, बावजूद इसके कि उनकी शारीरिक सीमाएं भी हैं। मैं समझता हूं कि यह बहुत ही प्रेरक प्रसंग भी एक अपने आप में है। तो मित्रों, सच यह है कि उस पूरी की पूरी टीम को मैं आप सब अपने प्रिय श्रोताओं की ओर से, एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से, मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से भी बधाई देना चाहूंगा। और राष्ट्र उनके इस सच पूछे तो कहीं ना कहीं उपलब्धि से अपने को गौरवान्वित डेफिनेटली महसूस करेगा ही, क्योंकि हम भी तो आखिर में उसी के ही हिस्से हैं। दोस्तों, एक तीसरी जो छोटी सी चीज है, छोटी सी खबर थी, वो ये थी कि जो हमारा चुनाव आयोग है, आपने सुना कि उसने रिक्वेस्ट की है गवर्नमेंट से कि जो 15 से 17 साल के जो आयु वर्ग में जो स्टूडेंट होते हैं, खासकर जो 10th से 12th के स्टूडेंट लगभग इसी के आयु वर्ग में होते हैं, उन्होंने कहा है कि जो मतदान होता है उसके बारे में एक चैप्टर उनके सिलेबस में डालें, क्योंकि 18 साल में मतदान देने के लायक हो जाएंगे, तो इससे पहले उनको मतदान के बारे में जानकारी हो जाए। और यदि किसी वजह से अभी ये संभव नहीं है तो उन्होंने फिर एनसीईआरटी से कहा है कि वो एक अलग से एक्स्ट्रा करिकुलम के रूप में एक छोटी सी पुस्तिका निकाले और लोगों को शिक्षित करे। तो चुनाव सुधार और चुनाव प्रक्रिया के बारे में लगातार कोशिशें चल रही हैं। चुनाव सुधार एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, सिविल सर्विस में इस पर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो एक छोटा सा तथ्य है जो आपके दिमाग में रहना चाहिए, और सजेशन के तौर पर यदि प्रश्न आएगा तो आप उसमें डाल सकते हैं कि चुनाव आयोग ने सरकार से यह निवेदन किया है। दोस्तों, AIR न्यूज से तो बस इतनी ही बातें हैं। अब मैं आता हूं थोड़ी सी प्रेस क्लिपिंग्स के ऊपर। फ्रेंड्स, मैं आपको दो तीन प्रेस क्लिपिंग्स के बारे में सबसे पहले बता दूं, फिर एक के बारे में थोड़ी सी चर्चा करूंगा जो वक्त जीतने की इजाजत देगा। दैनिक जागरण में एक ब्रह्मा चलानी जी की का आर्टिकल है, वो अच्छा लिखते हैं, खासकर नेपाल पर चीन के वर्चस्व का खतरा, ये उसका शीर्षक है। देखिए, नेपाल और भारत के बहुत अच्छे संबंध रहे हैं, लेकिन नेपाल में एक कम्युनिस्ट पार्टी भी है जो काफी सक्रिय है, और आप जानते हैं कि चीन में कम्युनिस्ट सरकार है, तो उस पार्टी का सीधे चीन से संबंध है। और खासकर अभी पिछले कुछ सालों से, दो चार पांच सालों से धीरे धीरे चीन वहां पर अपना प्रभुत्व बढ़ाता जा रहा है, क्योंकि वो पार्टी धीरे धीरे वहां सत्ता में आ रही है, मजबूत हो रही है, गठबंधन में शामिल हो रही है, तो पावरफुल हो रही है। ऐसी स्थिति में भारत के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है कि कैसे खासकर नेपाल और चीन के जो इतने घनिष्ठ संबंध होते जा रहे हैं उसमें अपने को बनाए रखे और चीन की तुलना में अपने संबंधों को ज्यादा घनिष्ठ करे। राइट, नेपाल भी हमारा पड़ोसी देश है और चीन भी हमारा पड़ोसी देश है। इस दृष्टि से ये जो आर्टिकल है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिविल सर्विस के सिलेबस में नेबरिंग कंट्री स्पेशली स्पष्ट रूप से मेंशन किया गया है। तो क्या चल रहा है, किस तरह की व्यवस्थाएं हो रही हैं, किस तरह के भविष्य दृष्टि बन रही है, आपको इस आर्टिकल से पढ़ने को मिलेगा, तो आप इसे जरूर देखिए, पढ़िएगा। दोस्तों, एक गवर्नर के बारे में जो मैंने अभी बात की, तमिलनाडु के गवर्नर के सामने अभी जो संकट पैदा हुआ है उसको लेकर इकोनॉमिक टाइम्स ने एक एडिटोरियल कमेंट किया है, वो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। और इकोनॉमिक टाइम्स का एक बहुत अच्छा और एडिटोरियल कमेंट है, खासकर वो CAG को लेकर के, कि क्या CAG को जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस होंगी उसका भी ऑडिट करना चाहिए। आप ध्यान दीजिए, 2016 में एक क्वेश्चन पूछा गया है CAG को लेकर के, और वो क्वेश्चन यानी कि CAG के क्या काम है, क्या अधिकार, उसमें ये पूछा गया है कि जो CAG है कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सरकार के की जो नीति कार्यान्वयन है उन सब की भी ऑडिट करने की बात करके वो अपने क्षेत्र का अतिक्रमण कर रहा है, या कह लीजिए कि CAG की अति सक्रियता, जैसे न्यायिक सक्रियता कहते हैं ना, कुछ उसी तरह का प्रश्न वहां पूछा गया। 2016 की बात कर रहा हूं, अभी दिसंबर की बात। तो यहां पर वो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस की बात है। आपको मालूम है कि कुछ ही महीनों के बाद गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस का सिस्टम भारत में लागू होने जा रहा है, तो CAG की भूमिका क्या हो सकती है, क्या होनी चाहिए, उसको लेकर के भी एक अच्छा एडिटोरियल कमेंट है, आप इसे भी देखिएगा। इसके बाद फ्रेंड्स, टाइम्स ऑफ इंडिया का एक एडिटोरियल कमेंट है, खासकर ट्रंप जी राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने एक व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस अपॉइंट किया था, और उन्हीं जज ने अभी जो ट्रंप ने 7 देशों के नागरिकों को अमेरिका आने पर प्रतिबंध करने संबंधी आदेश जारी किया था, जब उन्होंने अपील की, तो यही वो जज हैं जिन्होंने ट्रंप के उस आदेश को असंवैधानिक बताया। उसको लेकर के एक एडिटोरियल कमेंट है कि आप देखिए कि जिन राष्ट्रपति ने कुछ ही दिनों पहले उनको नियुक्त किया था वही अभी राष्ट्रपति के खिलाफ खड़े हैं। तो ये कही जाती है दायित्व, और ये होता है सच पूछे तो जुडिशरी इंडिपेंडेंसी कि ठीक है आपने हमें नियुक्त किया तो कोई एहसान नहीं कर दिया, थैंक यू फॉर दैट, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं संविधान के साथ, नियम के साथ, राष्ट्र के साथ समझौता करूंगा। तो एक अच्छा उदाहरण है ये जुडिशरी इंडिपेंडेंसी के ऊपर, तो आप इसे देख लीजिएगा। मित्रों अब जो मैं आपको अंतिम क्लिपिंग्स देने जा रहा हूं वो राष्ट्रीय सहारा, कल के राष्ट्रीय सहारा में एक लेख छपा है गिरीश्वर मिश्र जी का, अच्छा लिखते हैं, इनके पहले भी मैंने कुछ लेख आपको प्रोवाइड किए हैं जाति की सत्ता और सत्ता की जाति को लेकर के। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि कोई बहुत नई चीज है, लेकिन फिर भी जो नए मुद्दों को लेकर के उन्होंने अपनी बात की है तो रिवीजन की दृष्टि से ही सही आपके लिए बहुत उपयोगी है। हाँ अगर आप सोशियोलॉजी के स्टूडेंट रहे हैं तो भले ही आपको बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिले, अदरवाइज ये आर्टिकल आपको पढ़ना चाहिए क्योंकि जो जाति व्यवस्था है भारत की बहुत ही प्रोमिनेंट है, हमारी जो सामाजिक संरचना है उसका बहुत अनिवार्य हिस्सा है, और हमारे देश में जो वीकर सेक्शन का बहुत बड़ा वर्ग है वो सच पूछे तो जाति के आधार पर ही निर्धारित है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, जाति के आधार पर ही निर्धारित है। तो उस दृष्टि से आपको यह सोचने विचारने के लिए बहुत अच्छे बिंदु देगा। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मैं आपको फिर से एक उदाहरण देना चाहूंगा 2016 के ही जनरल स्टडीज के फर्स्ट पेपर से, कि उसमें एक प्रश्न पूछा गया है, इंडिपेंडेंट क्वेश्चन है, आप देखिए क्वेश्चन क्या है कि गरीबी उन्मूलन की एक अनिवार्य शर्त गरीबों को वंचितता के प्रक्रम से विमुक्त कर देना है, उपयुक्त उदाहरण प्रस्तुत करते हुए इस कथन को पुष्ट कीजिए। एन इसेंशियल कंडीशन टू इरेडिकेट पावर्टी इज टू लिबरेट द पुअर फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ डिप्राइवेशन, सब्सटेंटिएट दिस स्टेटमेंट विथ सुटेबल एग्जाम्पल। दोस्तों ये 12.5 नंबर का प्रश्न है, आप देख रहे हैं ना कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें जो केंद्र में आप देखेंगे तो जाति व्यवस्था ही है, जो वंचितता के प्रक्रम से विमुक्त कर देने का मतलब ही है कि जो जाति इनके विकास में बाधा बनी हुई है गरीबी उन्मूलन के, तो जब तक इनको जाति व्यवस्था से विमुक्त नहीं किया जाएगा तब तक थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो ये प्रश्न पूछा गया था, तो इसी को आधार बनाकर मैं ये आर्टिकल भी आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, तो प्लीज आप इस आर्टिकल को देख लीजिएगा। तो दोस्तों अब मैं आता हूं आज के ईमेल पर, सभी ईमेल लिखने वाले अपने दोस्तों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं, गायत्री जायसवाल जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी से हैं, शुभम गुप्ता इलाहाबाद से, कीर्ति कड़िक उज्जैन मध्य प्रदेश से, अमित कुमार सैदपुर उत्तर प्रदेश से, राजीव कुमार, मनीष राय आगरा उत्तर प्रदेश से, देवाशीष शर्मा, निखिल सेठी बक्सर से, कौस्तु वर्मा रांची झारखंड से, निरंजन कर्नाटक से, पूजा शर्मा देवोली और अरुण कुमार, ज्योति देवोली और अरुण कुमार, आप सबका भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं, नमस्कार।